તારીખ 27/12/1995 શ્રી અનુભવ પ્રકાશ ગ્રંથ ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ઈડરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 187
મહા મુનિજનોનો ક્યાંથી લેવું છે મહા મુનિજનો નિરંતર સ્વરૂપ સેવન કરતે હૈ જો મહામુનિજન હૈ ભાવલિંગ જો જંગલ મે નિવાસ કરતે હૈ ક્રમ સે પૂરા નહીં પડતે ખાસ ખાસ બાત લેતે એટલે બોલે વહાં સે લેના હૈ મહામુનિજન નિરંતર સ્વરૂપ સેવન કરતે હૈ જંગલ મે જો નિવાસ કરને વાલે મુનિરાજ હૈ वो क्या करते हैं कि वो अपना स्वरूप का अनुभव में रहते हैं निरंतर अपने स्वरूप के अनुभव में रहते हैं दूसरा कोई कार्य वो करते नहीं है कोई कार्यभार है भी नहीं उनके माथे एक ही काम करते हैं मुझे भी मेरा त्रैलोक्य पूज्य सर्वोत्कृष्ट पद अवलोकन करके निज कार्य करना है मुझे भी यही कार्य करना है कर्म घटा में मेरा स्वरूप सूर्य छिपा हुआ है मेरा जो स्वरूप है वो तो सूर्य जैसा महान तेजस्वी है जैसे सूर्य बादल में छिप जाता है वैसे कर्म घटा में मेरा स्वरूप छिपा हुआ है मेरा स्वरूप सूर्य का प्रकाश कर्म घटा से जरा भी हानि को पहुंचा हानि को प्राप्त हुआ नहीं है हनाया हनाया न सुन हिंदी के रूप से हानि को प्राप्त नहीं हुआ ऐसा लिया है नष्ट नहीं हुआ हाँ हनी एट नाश पाई नष्ट नहीं हुआ मेरा स्वरूप सूर्य का प्रकाश कर्म घटा से जरा भी नष्ट नहीं हुआ या जरा भी हानि को प्राप्त नहीं हुआ बादलों के कारण से सूर्य में कोई हानि होती नहीं है क्यों कि बादलों के पीछे सूर्य तो जैसा है वैसा है वो तो बादलों के नीचे वाले को दिखता नहीं लेकिन बादल ऊपर जाएगा उसको तो पूरा पूरा जैसा है वैसा अनुभव में आएगा मात्र अवरोध अवरोध हुआ है वो नीचे वाले को प्रकाश का अवरोध हुआ है वो बादल का अवरोध हुआ है सूर्य को हानि नहीं पहुंची चाहे जितना कर्म घटा का जोर हो तो भी यह मारा स्वरूप मेरे स्वरूप का नाश कर सके नहीं मेरे स्वरूप का वो कर्म कितने भी हो मेरे स्वरूप को हानि कर सके उसका नाश कर सके ऐसी कोई ताकत कर्म में नहीं है तो लोग क्या है रोते हैं ना क्या करे ऐसा कर्म का उदय आया ऐसा कर्म का उदय आया हमारे बहुत कर्म का उदय ऐसा आया उस स्वरूप को भूल करके दीनता को प्राप्त होते हैं हाँ वो सब आता है पूर्व कर्म बलवान है क्या करूँ मैं क्यों कितना भी कर्म का जोर हो मेरे स्वरूप का नाश करने को कर्म का कोई सामर्थ्य नहीं है नाश करने का तो सवाल ही नहीं होता स्पर्श भी नहीं करता मैं तो अबद्ध स्पर्श हूँ कर्म से बंधा हुआ भी नहीं और कर्म से स्पर्शित हुआ भी नहीं चाहे जितना कर्म घटा का जोर हो तो भी यह मेरे स्वरूप का नाश कर सके नहीं, चेतन को अचेतन कर सके नहीं, चेतन का अचेतन बनाने में समर्थ नहीं है। मेरी ही भूल हुई है, जो कुछ भूल हुई है वो तो मेरी भूल हुई है। कौन सी भूल हुई है? कि जब स्वपद को भूला हूँ, मैं मेरे स्वपद को भूल गया हूँ। मूल में मैं कैसा हूँ वो मैं भूला हुआ हूँ। ये भूल को मिटाऊं, ये भूल को मिटाऊं, क्योंकि मेरा स्वपद तो जैसा का वैसा बना बनाया हुआ है, नहीं नया बनाने का नहीं है, वो तो जैसा है वैसा अनादि का है। मैं भूला हुआ हूँ, उसको संभालूँ तो मैं ऐसा हूँ, बस उतना ही करना है। क्योंकि वे अचेतन है, कर्म अचेतन नहीं है क्या? चेतन है, परमाणु है ना कर्म के, तो वो अचेतन है और मैं चेतन हूँ, तो मुझे कर्म कैसे स्पर्श सकता? अचेतन चेतन को कैसे स्पर्श करता है? स्पर्श कर सकता नहीं है। दूध में पानी डाला है तो पानी का दूध हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ, दूध तो बढ़ गया। एक बर्तन में थोड़ा दूध था, उसमें पानी डाल दिया तो दूध बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो दूध का पानी का दूध हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ। मिलाने पर भी पानी पानी रहा, दूध दूध रहा है। ऐसे शरीर संयोग कर्म संयोग होने पर भी चेतन चेतन रहा, अचेतन अचेतन रहा, परमाणु परमाणु रहा, जीव जीव रहा। परमाणु में चैतन्य का प्रवेश नहीं, कोई परमाणु सजीवन होता नहीं, और जीव में परमाणु का कोई प्रवेश नहीं है।
हमने जड़ में अपने अस्तित्व को माना है, इसलिए हम अफेक्टेड होते हैं।
हाँ, इसलिए हम
अफेक्टेड होते हैं।
हाँ हाँ सर होते हैं, उसका कारण कि हम उसमें अपनत्व कर लेते हैं,
जड़ में अपनत्व बुद्धि रखती है। हाँ, जड़ से अफेक्टेड होते हैं
तो हो जाता है। हाँ एम अच्छे ज्ञान राग रूप थतु नहीं, राग ज्ञान रूप होता नहीं कभी, ज्ञान हमेशा ज्ञान ही रहता, राग हमेशा राग रहता। ग्यारह में पाने ज्ञान जानने मात्र, वहां से लेना है। हिंदी में दसवां पेज है। ज्ञान जानने मात्र, दर्शन देखने मात्र, सत्ता अस्तित्व मात्र, तथा वीर वस्तु निष्पन्न सामर्थ्य मात्र, केवल वीर मैंने बल पुरुषार्थ, वस्तु निष्पन्न मैंने जैसी वस्तु का स्वरूप है वैसा ही प्रणमन करने का कराने का जो गुण है उसको पुरुषार्थ कहने में आता है। ऐसा प्रतीति भाव को, रुचि भाव को, प्रतीति भाव और रुचि भाव दोनों एक अर्थ लिया है, ऐसे ऐसा प्रतीति भाव को, रुचि भाव को आस्तिक्यता रूप श्रद्धा ने श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा कैसे कहते, किसको कहते हैं, कि अपना जो स्वरूप है, ज्ञान जानने मात्र, दर्शन देखने मात्र, सत्ता अस्तित्व मात्र और पुरुषार्थ वस्तु निष्पन्न सामर्थ्य। पुरुषार्थ का क्या कहें कि वस्तु को जैसी है वैसे परिणाम में प्रकट कर देता है। ऐसे प्रतीति भाव को, ऐसी रुचि भाव को और आस्तिकता रूप श्रद्धान को श्रद्धा कहते हैं। आस्तिकता मैंने ऐसा मैं हूँ, ऐसा ही हूँ, हूँ पण आता है अस्तित्व में, क्या आता है आस्तिक में, आस्था नहीं कहते हैं कि हम आस्तिक है नास्तिक है
ऐसा।
हाँ, आस्तिकता क्या होते हैं, श्रद्धान में होती है आस्तिकता, तो वो जैसा है वैसा मंजूर करता है, स्वीकार करता है, आस्तिकता से स्वीकार करता है, नास्तिक सत्ता से अस्वीकार करता है, ऐसा स्वीकार करना उसको श्रद्धान कहने में आता है। प्रतीति भाव, रुचि भाव, तो दोनों को है, वो एक अर्थ है, शब्द अलग अलग है, उसका भाव एक ही है। प्रतीति भाव को हो, रुचि भाव को हो या आस्तिक के रूप श्रद्धा भाव को हो, तीनों एक ही है, उसको हम श्रद्धा कहते हैं।
प्रतीति आती है तो रुचि बढ़ती है, रुचि बढ़ती है तो मैं बनाता
है। श्रद्धा जो श्रद्धा है उसमें भाव क्या है, प्रतीति भाव है, श्रद्धा में भाव क्या है, प्रतीति भाव है, रुचि भाव है और आस्तिक भाव भी है, श्रद्धा में तीनों भाव है।
खाली
हूं पना है ऐसा ही नहीं, प्रतीति भाव भी है, रुचि भाव भी है और आस्तिक भाव भी है, उसको श्रद्धा कहने में आता है। प्रतीति में क्या है, विश्वास, ऐसा ही हूँ, जैसा अनुभव में वेदन में आया वैसा ही हूँ, ऐसी प्रतीति। प्रतीति माने खात्री, प्रतीति माने खात्री, अपने गुजराती में खात्री कहते, हिंदी में क्या कहते हैं,
भरोसा,
भरोसा, विश्वास। उससे मैंने उस श्रद्धान से उत्पन्न हुए आनंद कंद में किस प्रकार से मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ, किस प्रकार से मैं सुखी हूँ, कि जानने से होने वाला आनंद, जानने से उत्पन्न आनंद ते ज्ञानानंद, स्वरूप को देखने से उत्पन्न आनंद तो वो दर्शनानंद, और परिणमने से उत्पन्न होने वाला आनंद को चारित्र आनंद। देखो सभी गुणों में आनंद लिया, आपको जानते ही आनंद हुआ तो ज्ञानानंद हुआ, दर्शन करने से आनंद हुआ वो दर्शनानंद हुआ, परिणमन करने से आनंद हुआ वो चारित्र आनंद हुआ। है तो एक ही समय में, लेकिन भेद से कहा। ऐसे सर्व गुणों का आनंद को, आनंद का मूल निज स्वरूप आनंद कंद, उसकी केली, केली मैंने रमणता, स्वरूप में परिणति को रमाना वही है, आनंद से परिणति स्वरूप रमणता करती है आनंद के कारण से। आत्मा में आनंद नाम का गुण है। विज्ञान की भाषा में साइंटिफिक लैंग्वेज जिसको कहते हैं, उसमें गुणों को जो शक्ति है, पदार्थ के गुण है, शक्ति है, उनको प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस कहने में आता है। क्या उसकी प्रॉपर्टी बोली जाती है? स्थाई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। कैसे? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और इनके जो धर्म है उसको कैरेक्टर्स कहते हैं। वो लिया है विज्ञान और धर्म में, वो बात लिया है, प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टर्स ऑफ द सब्सटेंस। तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, उसमें आता है कि नहीं आता है केमिस्ट्री में? हाँ, तो ये इनके कैरेक्टर्स हैं।
हाँ,
जैसे मार्बल है, तो मार्बल की प्रॉपर्टी क्या है? उसमें कौन से एलिमेंट हैं? के कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और ये चूना उसके लगाते हैं ना दीवार पर, वो भी क्या है? वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। हाँ, लेकिन दोनों का कैरेक्टर अलग अलग है, प्रॉपर्टी एक ही है। क्या दोनों का प्रॉपर्टी तो एक ही है? कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन चूना चिकना होता है, वो दीवार पर चौंटता है, जबकि मार्बल का पाउडर करे वो चिकना होएगा नहीं, वो रूखा रहेगा। तो दोनों का कैरेक्टर्स अलग अलग है और प्रॉपर्टी एक सी है। ऐसे जीव, सभी जीवों की प्रॉपर्टी एक सी है, कैरेक्टर सबका अलग अलग है कि नहीं? ये सब साइंस है। तो उसमें आनंद की, आनंद नाम का जो गुण है वो जीव की प्रॉपर्टी है। वो तो जब स्वरूप का ध्यान लगता है तो आनंद गुण परिणमन करता है, और स्वरूप को जान, वो आनंद है, इसका वो ज्ञान का भी वो रूप है, ज्ञान का भी वो रूप है। तो ज्ञान शुद्ध होता है तो वो आनंद को धारण करता है और आनंद गुण भी प्रकट होता है। तो ज्ञान का आनंद और आनंद का भी आनंद।
तो सुख गुण का बात किया गया था, सुख प्रकट होता है अनुभूति के कारण, आज आनंद
भी है। सुख भी इसकी प्रॉपर्टी है।
तो सुख शांति और आनंद तीनों एक तो नहीं होता?
हाँ, सुख भी होता है, शांति भी होती है, आनंद भी होता है, सब होता है, सभी गुण प्रकट होता है। जब स्वरूप का ज्ञान होता है तो सुख भी उत्पन्न होता है, आनंद भी उत्पन्न होता है और शांति भी मिलती है।
व्यक्त परिणाम कौन सा होता है? जो अनुभूति में जो परिणाम आता है वो व्यक्त परिणाम कौन सा होता है?
सभी का, सबों का व्यक्त परिणाम है।
फीलिंग में क्या
आता है? सब फीलिंग में आता है, तीनों फीलिंग में आता है,
तीनों ही आएगा।
हाँ,
इतने सारे गुण जो है 140 है, कितने गुण है वो सारे के सारे के, तो ये तीन जो है ये प्रकट रूप में आते हैं।
नहीं, आनंद गुण प्रकट रूप में अनुभव में आता है।
फीलिंग में कौन सा गुण है?
फीलिंग में आनंद विशेष रूप से आता है,
शांति और
आनंद की विशेषता है, आनंद की विशेषता है। क्योंकि आनंद है वो उल्लास है, आनंद का उल्लास होता है। हाँ, तो उल्लास से वो विशेष रूप से अनुभव में आता है। बात तो एक और सूक्ष्म करने की थी कि वेदन तो ज्ञान का होता है, वेदन करने का धर्म कैरेक्टर किसका है? ज्ञान का है। और ज्ञान का रूप भी आनंद है, तो अपने रूप सहित वेदन में आता है और आनंद प्रकट होता है, वो भी ज्ञान में झलकता है, तो एक साथ दो बात हो गई, आनंद प्रकट हुआ वो भी ज्ञान में आया, और ज्ञान का रूप जो आनंद है वो भी प्रकट अनुभव में आया, वेदन में आया। तो आनंद है वो घनिष्ठ रूप से अनुभव में, दोनों एकाकार होकर के अनुभव में आता है, भेद नहीं पड़ता वहां, ज्ञान और आनंद का भेद नहीं पड़ता है। इस तरह से विशेष रूप से आनंद होता है, जब अनुभव होता है तो बहुत आनंद होता है, पूर्व आनंद होता है। ऐसा आनंद वचन अगोचर होता है, जो वचन में कहा जाता नहीं। ऐसे सर्व गुणों का आनंद का मूल निज स्वरूप आनंद कंद क्या है? ऐसे सर्व गुणों का आनंद का मूल निज स्वरूप आनंद कंद, पूरा स्वरूप ही आनंद कंद है, स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप। कितना परसेंटेज? एक प्रश्न थोड़ा समझने के लिए लेते हैं कि आत्मा में अनंत गुण है और एक एक गुण है वो संख्या से के हिसाब से एक है, और ऐसे अनंत गुण है, तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है वो कितना परसेंटेज में? कि 100 के 100% आनंद ज्ञान स्वरूप है, और आनंद स्वरूप 100% आनंद स्वरूप है। सभी गुणों का परसेंटेज कितना है? 100%। होता है ऐसा? ऐसा ही होता है। जैसे एक मनुष्य का कितना संबंध होता है कि वो अपना पुत्र का तो पिता है और अपने पिता का पुत्र है, तो 50% पुत्र है और 50% पिता है, 100% पिता है और 100% पुत्र भी 100% है और पिता भी 100% है, क्या नहीं? जितना संबंध है उतना 100% ही है। मामा का भांजा भी 100% और भांजा का मामा भी 100% है, अधूरा नहीं है कहीं भी, होता है ऐसा। सब गुणों से 100% पूरा है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। 100% नहीं, एक साथ गरीब अमीर नहीं होता है, लेकिन बाप बेटा तो एक साथ होता है क्या? जो अमीर है वो गरीब नहीं है, गरीब है वो अमीर नहीं है, लेकिन बाप बेटा तो एक साथ है, मामा भांजा भी एक साथ है। ऐसे ज्ञान स्वरूप भी एक साथ है, आनंद स्वरूप भी एक साथ है, जितने भी गुण है उतने स्वरूप एक साथ भी 100 के 100%। स्वविकल्प दशा में ज्ञान की मुख्यता है, आनंद की इतनी मुख्यता नहीं है, ज्ञान की मुख्यता। इसलिए सुख समूह हुआ हूं, क्या प्रश्न? सर्व गुणों का आनंद का मूल निज स्वरूप आनंद कंद, उसमें केली मैंने रमणता स्वरूप में परिणति को रमाना वही है, स्थिर करना, परिणति को रमाना मैंने जमाना, वही निज स्वरूप की रमणता है, इसलिए सुख समूह हुआ हूं। इससे दूसरा कोई ऊंचा उपाय, उच्च कोटि का उपाय नहीं है। परम कृपालु भगवान भव्य जीवों को यह शिव राह, मैंने शिव मार्ग, कल्याण मार्ग, मोक्ष का मार्ग सोहला मैंने आसान करके दिखाया है, सुगम सुगम करके, सरल करके, सुखदायक करके, सुहावना करके दिखाया, सुहायमान सुहावना मैंने सुहायमान करके दिखाया है। भगवान की भावना से संत महंत हुए, ऐसे आत्मस्वरूप भगवान की भावना से संत महंत हुए। अब दीपचंद जी अपनी बात करते हैं, इसलिए वो बात लिया, वो पैराग्राफ को लिया है कि मैं भी यही भावना का अवगाढ़ स्तंभ गाढ़ा है, रूपा है मैंने गाढ़ा है, ये अपने अपना परिणाम का बात किया है कि मैंने भी ऐसी भगवान की भावना, आत्मस्वरूप की भावना का अवगाढ़ स्तंभ स्थापित किया है, गाढ़ा है। थंब क्यों किया कि वो लड़ाई होती है उसमें विजय स्तंभ होता है और वहाँ अपना ध्वज लहराते हैं, जहाँ तक वो आगे बढ़ते हैं जीत के, जिसके प्रदेश बढ़ता है वहाँ उस स्तंभ का रोपित करके ध्वजा अपना फ्लैग को लहराते हैं। ऐसे हम भी हमें मोक्ष मार्ग में जितने आगे बढ़े हैं वहाँ विजय स्तंभ को स्थापित किया है, यहाँ से हम पीछे जाने वाले नहीं है। इसका मतलब क्या है स्तंभ गाड़ने का, कि हम यहाँ से पीछे हटेंगे नहीं। ऐसे अंदर में लड़ाई किया,
कब्जा कर लिया,
बाकी यहाँ तक कब्जा कर लिया, अब हम इससे पीछे जाएंगे नहीं। ऐसे लड़ाई कर करके हम आगे बढ़े हैं, अब पीछे जाने वाले नहीं है, अप्रतियत भाव से आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं पड़ेंगे।
पीछे तो सब कब्जा करके आगे आए हैं, अब पीछे
नहीं जाएंगे, हम पीछे नहीं जाएंगे, कब्जा करके आगे आए हैं, अब पीछे जाएंगे नहीं। सम्यक दृष्टि को ऐसा निरंतर अभ्यास रहता है, ऐसा परिणमन का अभ्यास सम्यक दृष्टि को निरंतर रहता है, हमको भी रहता है, ऐसा करके अपनी बात डाल दिया और कहते हैं कि सबको ऐसा ही रहता है, जैसा मुझको रहता है ऐसा सबको रहता है सम्यक दृष्टि को। कर्म के अभाव से स्वरस मंडित सुख का पुंज प्रकट होवे, तब ज्ञान कृतकृत्य होता है। कृतकृत्य मैंने क्या, कभी कुछ करने का बाकी, सुख मिल गया, सुख का प्रयोजन है और सुख मिल गया तो कृतकृत हो गया, अब मुझे कुछ करने का बाकी। कृतकृत्य मैंने करने लायक को कर लिया, जो करने लायक था वो कार्य मैंने कर लिया, उसको कृतकृत्य कहते हैं। कृत्य मैंने करने योग्य, कृत मैंने कर लिया। यह आत्मा का स्वरूप गुप्त हो रहा है, वो साक्षात कैसे हो, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कैसे अनुभव में आए, तो कहते हैं कि परोक्ष ज्ञान द्वारा भावना को बढ़ाने से साक्षात होता है। स्वरूप की भावना जितनी बढ़ती है तो वो साक्षात हो जाता है। आत्म भावना भाव का जीव लहे केवल ज्ञान रहे। परोक्ष ज्ञान वेड़े भाजप अत्यारे तो शुभ मती स्वरूप ज्ञान है, वो तो परोक्ष है अभी, लेकिन वो ज्ञान से स्वरूप को ज्ञान में लेकर के भाते हैं, सिर्फ जानते नहीं है लेकिन भाते हैं, पूरा जानने का नहीं है, भावना समेत जानने की बात है, ऐसी बात है। वो भावना है वो प्रत्यक्ष कर लेता है, परोक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष कर लेता है। इसका विषय प्रत्यक्ष होने से तदाकार परिणामी होकर के वो प्रत्यक्ष होता है। ज्ञान ज्ञान में कैरेक्टर कैसा है, ज्ञान एक शक्ति है, गुण है, उसका कैरेक्टर कैसा है, तो वो जिसको अवलंबन होता है उस आकार को वो धारण कर लेता है। जिसका भी वो अवलंबन करता है उस आकार को वो धारण कर लेता है। जैसे कि मिठाई खाया तो जैसे मैं मीठा मीठा हो गया सारा का सारा, और बहुत कड़वी चीज खाया तो मैं कड़वा कड़वा हो गया। उस रूप तद रूप तदाकार परिणमन कर लेता है ज्ञान। ऐसे आत्मा स्वरूप से सहज अनंत प्रत्यक्ष है। कैसा है? अनंत प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान में जो अनंत प्रत्यक्षता प्रकट हो गई वो कहां से आई? कि अंदर थी वो प्रकट हुई। करके वो प्रत्यक्ष परिणमन करने लगता है। तो परोक्ष द्वारा, मैंने पहले परोक्ष था, भावना भाया कि मैं तो ऐसा प्रत्यक्ष हूं, तो भाते भाते वो प्रत्यक्ष हो गया। भाते भाते जैसा है, जैसा स्वरूप है, स्वरूप को भाते भाते जैसा स्वरूप है वैसा तदाकर परिणामी हो गया। इस तरह से। और सर्वथा परोक्ष नहीं है, जानने में परोक्ष है, वेदन में प्रत्यक्ष है। जानने में वो परोक्ष है लेकिन वेदन में प्रत्यक्ष है, इसलिए ज्ञान सर्वथा परोक्ष नहीं है। और साधक दशा में सर्वथा प्रत्यक्ष भी नहीं है। कथनचित परोक्ष है और कथनचित प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष अंश द्वारा अपनी अनंत प्रत्यक्षता को प्रत्यक्ष तौर से अवलंबन करके प्रत्यक्ष हो जाता है। फिर से कि प्रत्यक्ष अंश द्वारा, मैंने वेदन अंश द्वारा अपनी अनंत प्रत्यक्षता को प्रत्यक्ष तौर से अवलंबन कर लेता है, ये एक परिणमन करने की विशेषता है। कोई काम करने का भी तौर तरीका तो होता है कि नहीं होता है? तो वो एक तरीका है अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रकट होने का, कि प्रत्यक्ष को, प्रत्यक्ष स्वरूप को प्रत्यक्ष तौर से अवलंबन करता है कि मैं ऐसा प्रत्यक्ष हूं। तो परिणमन करने वाला भी प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, तो उस वक्त आनंद की उत्पत्ति, अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति भी होती है, अतीन्द्रिय सुख की भी उत्पत्ति होती है, अतीन्द्रिय शांति की भी उत्पत्ति होती है। ऐसा होता है। वेदन प्रत्यक्ष इसलिए है कि वेद्य वेदक दो नहीं है, दो होवे तो परोक्षपना होवे ने, वो खुद ही वेद्य भी खुद ही है, वेदावा योग्य भी खुद ही है, वेदन में आने योग्य भी खुद ही है, और वेदन करने वाला वही पर्याय है, इसलिए परोक्षपना होवे कहाँ से? ये तो सवाल ही नहीं। वेद्य वेदकपना में कोई भेद पड़ता ही नहीं, मैं ही मैं हूँ अभेद रूप से। और अवलंबन सहज अनंत प्रत्यक्ष का है, देखता है वो प्रत्यक्ष अंश से अनंत प्रत्यक्षता को अवलंबन करता है, और उसमें भाव आता है, उसको जिस प्रकार से भाव आता है वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष तौर से मैं ऐसा ही हूँ। उसमें वो बात है, उसमें वो थोड़ा गुड भाषा में है। एकांत शुद्ध अनुभव रूप में हूँ, 621 पेज है गुजराती में, आखिर का पैराग्राफ है। सर्व से सर्व प्रकार से मैं भिन्न हूँ, सर्व से सर्व प्रकार से मैं भिन्न ज्ञानमय हूँ, ऐसा लेना। नास्ति अस्ति के समेत आ गई, अकेली नास्ती नहीं, भिन्न हूं तो भिन्न तो नास्तिकपना हो गया। सर्व से सर्व प्रकार से मैं भिन्न ज्ञान में हूं, एक केवल असंग चैतन्य स्वरूप हूं, शुद्ध मैंने असंग चैतन्य स्वरूप हूं। क्यों? कि सर्व को जानते हुए भी और कसाई बगल में होते हुए भी मेरा असंगपना वैसा का वैसा रहता है, मैं किसी से लेपाईमान नहीं होता, निर्लेप चैतन्य हूँ, असंग चैतन्य हूँ माने निर्लेप चैतन्य हूँ, इसलिए मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ। ये शुद्ध में से दो भाव निकलता है कि निर्लेप हूँ और असंग हूँ, किसी से मेरा संग हुआ नहीं। परमोत्कृष्ट कैसा हूं मैं? परम उत्कृष्ट, अनंत उत्कृष्ट मैंने कितना, अनंत अचिंत्य सुख स्वरूप मात्र हूं, अनंत सुख का धाम हूं ना, तो कितना अनंत सुख है, अचिंत्य चिंतन में नहीं आए विकल्प आती, ऐसा मैं हूं। और एकांत शुद्ध अनुभव स्वरूप, अनुभव रूप, अनुभूति स्वरूप प्रत्यक्ष हूं, यहां प्रत्यक्ष हूं, यहां प्रत्यक्ष लेना है, क्योंकि वेदन प्रत्यक्ष है, अनुभव प्रत्यक्ष है। तो एकांत ऐसा हूं, एकांत मैंने क्या कि अनादि अनंत ऐसा हूं, अबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही अनुभव में आता है, इसलिए एकांत है वो, यहां एकांत शब्द लिया, यहां अनुभूति की बात आई, वहां एकांत लिया, क्योंकि ज्ञान में वेदन, ज्ञान वेदन एकांत रहता ही है, वहां किसी की पहुंच नहीं है। मैं एकांत अनुभूति स्वरूप प्रत्यक्ष हूं, क्योंकि वेदन में परोक्षता होती नहीं, इसलिए मैं प्रत्यक्ष स्वसंवेदन स्वभावी हूं। वहां विक्षेप क्या, विकल्प क्षा क्या, भय क्या, दुख खेद मैंने दुख क्या, और अन्य अवस्था क्या, मैं मात्र निर्विकल्प हूं, ऐसा मैं निर्विकल्प हूं, कोई भेद मेरे में नहीं है, मैं शुद्ध शुद्ध दूध से लिया है, मैं शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध सर्वोत्कृष्ट शुद्ध शब्द कैसा रही है, प्रकृष्ट शुद्ध, मैं शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध प्रकृष्ट मैंने उत्कृष्ट, प्रकृष्ट मैंने उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट, उसको प्रकृष्ट कहते हैं, सर्वोत्कृष्ट वो प्रकृष्ट है। मैं शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध परिपूर्ण पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ इसलिए पवित्र हूँ। और परम शांत सुधारसमय चैतन्य हूँ। कितनी शांति है, कैसी शांति है कि सुधा मैंने आनंद, सुधा मैंने अमृत, सुधा मैंने अमृत, सुधा का अर्थ होता है अमृत, अमृतमयी शांति है। मेरी शांति कैसी है, ऐसी जैसा अमृत मीठा होता है, ऐसी मीठी 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 शांति है मेरे। मैं परम शांत सुधामय चैतन्य बेहद परम, मैंने बेहद ऐसी मीठी शांति भी कितनी है कि बेहद प्रदेश प्रदेश में बेहद शांति, अमृतमय बेहद शांति मेरे में भरी है। फिर अशांति कैसी, ऐसा मैं हूं तो अशांति कैसी। बोल देना आत्मभावना भाई जी, ऐसी आत्मभावना भाते भाते आत्मभावना भावता जीव लहे, केवल ज्ञान अनुभव तो होवे, सम्यक दर्शन तो होवे, अरे केवल ज्ञान भी हो जाए। मात्र निर्विकल्प हूं या दूसरी भाषा आप दो दफे लिया इस बात को यहां से निकालते हैं कि मैं परिपूर्ण अंतर्मुख स्वभावी हूं, क्योंकि बहिर्मुख होने में विकल्प होता है। मैं तो परिपूर्ण अंतर्मुख स्वभावी हूँ, एक अंश में बाहर निकलू परिणाम बाहर निकले वो मेरा स्वरूप है। परिपूर्ण अंतर्मुख स्वभावी डूबा हुआ हूँ मैं, मेरे में डूबा हुआ हूँ। क्योंकि नारियली पर नए नए श्रीफल आते ही रहते हैं, नारियली पर नए नए श्रीफल आते रहते। जो बहुत बुद्धिमान व्यापारी होते हैं ना, वो नारियल लेने के लिए बाजार में नहीं जाएगा, वो नारियली तक पहुंचेगा क्या। क्यों, तो जो नारियल बेचता है तो मुनाफा करके बेचता है, तो इतना महंगा क्यों लूं मैं खुद ही नारियल पर चढ़ जाऊं, मुफ्त में आ जाएगा नारियल। ऐसा यहां भी आत्मा सचोड़ी, मैंने समझते गुजराती शब्द है काठियावाड़ी, कृपाणुदेव का वो काठियावाड़ी सचोड़ी, मैंने आप हिंदी में भी शब्द तो होगा, पूरी 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 वो तो पूरे समग्र 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 सचोड़ी में आज टोन आवे ही टोन बीजे आवतो बता। भाषांतर में ओरिजिनल टोन नहीं आता है, टोन बदल जाता है, टूट जाता है, मूल भाषा में टोन आता है। जो भावना अधूरी रही है अभी पूरी तो करनी है,
इसी से तो पूरी होगी जो पैरा पढ़ने होगी, तो पैरा पढ़ने बोल रहे उसी से तो पूरी होगी।
मैं मात्र परिपूर्ण अंतर्मुख स्वभावी हूँ, तो निर्विकल्प उतरा लिया ने, मैं नीज स्वरूप में ऐसा इतना इतना उतरा लिया ने, भिन्न हूँ, असंग हूँ, सुखधाम हूँ, प्रत्यक्ष अनुभूति स्वरूप हूँ, निर्विकल्प हूँ, ऐसा 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 अभेद नीज स्वरूप में उपयोग को करता हूँ, उपयोग को करता हूँ, मैंने मैं ऐसे निज अभेद स्वरूप में सावधान होकर के लीन होता, सावधानी से लीन होता हूँ, ऐसा मैं हूँ, ऐसा अंतर सावधानी में आता हूँ, उसको कहते हैं कि मैं उपयोग करता हूँ और मैं उस प्रकार से निज अभेद स्वरूप में व्याप्य व्यापक भाव से तन्मय होता हूँ, उसमें व्याप्य व्यापक बना लेना, पूरा प्रसर जाता हूँ मेरे स्वरूप में, इस प्रकार से लीन हो जाता हूँ, ये आत्मभावना है। सत्पुरुष का उपकार गाया है वहाँ, वचनामृत का, वचनामृत में सत्पुरुष का उपकार गाया है,
स्वरूप प्रकट होता है और उसका सत्पुरुष,
वो किस तरह से उपकार गाया है, उपकार गाने की भी एक कृपालु देव की लाक्षणिक पद्धति है, उपकार गाने की भी अपनी एक खास पद्धति है, जो अचिंत्य द्रव्य की शुद्ध चीती स्वरूप कांति परम प्रकट होकर के अचिंत्य करती है, वह अचिंत्य द्रव्य और कोई नहीं है, सहज स्वाभाविक निज स्वरूप है, वह अचिंत्य द्रव्य कौन है कि सहज स्वाभाविक निज स्वरूप है, कोई दूसरे की बात नहीं चल रही है, ऐसा निश्चय जिस परम कृपालु सत्पुरुष ने प्रकाशित किया उसका अपार उपकार है। देखो उपकार, उपकार करने की बोलने की पद्धति भी है ना, एक उपकार गाने की बात थी तो इतनी लंबी जोड़ी बात कर दिया, अचिंत्य मैंने क्या कि जिसका चिंतन करते हुए भी चिंतन की पहुंच नहीं हो, चिंतन करते 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 भी इसकी चिंतन की पहुंच जहां नहीं हो, ऐसा चिंतन से अगम अगोचर, चिंतन से भी अगम अगोचर लेकिन ज्ञान से सुगम सुगोचर, सिद्धा ज्ञान से, प्रत्यक्ष ज्ञान से सुगम सुगोचर, घबराने की जरूरत नहीं, अगम अगोचर बोला तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ज्ञान से तो सुगम सुगोचर, क्योंकि ज्ञान में तो सीधा आता है, जहाँ ज्ञान अंतर्मुख होता है तो अंतर्मुख होते ही सीधा अवलंबन में आता है, सुगम सुगोचर क्योंकि बीच में कोई आड़े आ ही नहीं सकता, ज्ञान ज्ञान अंतर्मुख होता है तो बीच में कोई आड़ा आता नहीं है, चिंतन करता है तो विकल्प आड़ा आता है चिंतन का, लेकिन अंतर्मुख होता है, अंतर्मुख अवलोकता विलेखता नहीं वा, उपजे मोह विकल्प थी समस्ता संसार, अंतर्मुख अवलोकता बदा विकल्पों ने विलय थता वार लगे, क्या है कि विकल्प से चिंतन के विकल्प से तो ये स्वरूप है वो बिल्कुल अगम अगोचर है, क्योंकि विकल्प की वहां पहुंच नहीं है, विकल्प में वो ताकत नहीं, वो शक्ति नहीं, वो योग्यता योग्यता नहीं कि वहां पहुंचे वो है। जबकि अंतर्मुख ज्ञान का सीधा ही स्वयं का अवलंबन आता है, उसमें बीच में कोई आड़े आ सकता नहीं है। तो चिंतमन से तो अगम अगोचर है, लेकिन सीधा ज्ञान से अंतर्मुख ज्ञान से तो सुगम सुगोचर है, सर्व सुगम, सर्वत्र उसकी प्राप्ति हो सकती है। नारकी में हो तो वहाँ प्राप्ति हो जाती है, देवलोक में तो वहाँ प्राप्ति हो, तिरिंच में हो तो वहाँ प्राप्ति कहीं भी हो जाती है। ऐसा अचिंत्र द्रव्य, इसकी शुद्ध चैतन्य स्थिति, मैंने शुद्ध चैतन्य की जो पर्याय है उसको शुद्ध चित्ति कहती है। चैतन्य की परिणति शुद्ध चित्ति, चैतन्य में दर्शन ज्ञान भी है, ज्ञान में एक लोग ज्ञान थे, चैतन्य में दर्शन ज्ञान भी थे। शुद्ध चिति स्वरूप कांति, कांति मैंने तेज, कांति मैंने तेज, और कांति मैंने शुद्ध चैतन्य की शोभा, कांति को रूप कहते हैं, तेजस्विता का रूप हो उसको कांति कहते हैं। जो रूप तेजस्वी होता है ना उसको कांतिमय कहते हैं। तो कांति में तेज भी है और शोभा भी है, दोनों का एक रूप होवे तब कांति बनता है। ऐसे शुद्ध चैतन्य स्वरूप कांति परम प्रकट होकर के, परिपूर्ण प्रकट होकर के अवस्था को भी अचिंत्य कर देता है, वो भी अचिंत्य होती है, उसका भी चिंतन कर सकते नहीं है, वो सिर्फ अनुभव का विषय है। वह अचिंत्य द्रव्य, ऐसा अचिंत्य द्रव्य जिसमें से अचिंत्य तेजस्वी कांति प्रकट होती है, ऐसा अचिंत्य द्रव्य सहज स्वाभाविक निज स्वरूप है, वो तो मेरा स्वरूप है, ऐसा दूसरे की बात नहीं है, मैं ऐसा हूं स्वाभिमान, मैं ऐसा स्वाभिमान तेजस्वी हूं, ऐसा निश्चय प्रकाशित किया सत्पुरुष ने, ऐसा निश्चय प्रकाशित, मैं तो भूल गया था, कोई भान नहीं था, तो सत्पुरुष ने बताया कि देख तू ऐसा है अंदर में, देख जरा गौर से देख, तुमको मालूम पड़ेगा कि तुम ऐसा है। ऐसे सत्पुरुष का कितना उपकार है, पार पार उपकार है, उपकार का कोई पार नहीं है, मैंने कोई सीमित उपकार नहीं है, असीम उपकार है। तो इतना हो गया, बहुत कर दिया, सत्पुरुष का उपकार था ना, इसके सामने हमने इतना कर दिया, अपना समर्पण किया, उतना समर्पण किया, अपार उपकार है, असंभव। ऐसा करके सत्पुरुष के उपकार को गाया है। ऐसी भावना का अवगाढ़ स्तंभ गाढ़ा है, ऐसा कहते हैं दीपचंद जी, ऐसी भावना का मैंने अवगाढ़ स्तंभ गाया गाढ़ा है, और मेरा ज्ञान भी कृतकृत हो रहा है। वो आत्मा का स्वरूप अब तक गुप्त रहा है, वो कैसे साक्षात हो, वो भावना भाने से साक्षात होता है, वो किस प्रकार से सिद्ध होता है, प्राप्त होता है, ये बात कहने में आती है। ऐसा करके फिर उसी बात को खोल खोल करके कहेंगे, अलग अलग पहलू से बार बार खोल करके वही अनुभव के विषय को और स्पष्ट करते हैं।
Yeah.